ృందం పరం బ్రహ్మణ రాకృతి సౌందర్య సహస్రస్వం వందే నందాత్మో ప్రపన్న పారిజాతాయ పూత్రీపాణయ జ్ఞానముత్రాయ కృష్ణాయ నమః వందే సుతం దేవం కంసుచామూలమర్దనం దేవీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ీభూషితరాీతాంబరాధరుణబిందరాధరుష్టా పూర్ణేందుసుందర ముఖాదరవిందేత్ర కృష్ణాస్మరం కిమపి తత్వమహం నజానే హరి ఓం నమో कर्म और कर्म योग, ज्ञान और ज्ञान योग, भक्ति और भक्ति योग, ये दोनों चीजें हैं। कर्म और चीज है, कर्म योग और चीज है, ज्ञान और चीज है, ज्ञान योग एक वही चीज है। ऐसे ही भक्ति और चीज है, भक्ति योग और चीज है। योग में सब एक हो जाते हैं, कर्म ज्ञान भक्ति अलग अलग थे, योग में सब एक हो जाते हैं। तो कल जो ये बात एक प्रश्न आया मेरे सामने कि कर्म योग में जो कर्म करते हैं आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मोचते, योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म बहुत आवश्यक है। न कर्मणाम अनारंभा निष्कर्म पुरुष होते, कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्म सिद्धि नहीं होती और केवल कर्मों के त्यागने से भी सिद्धि नहीं होती। मानो कर्म करना छोड़ दे तो सिद्धि नहीं होती, कर्म न करे तो सिद्धि नहीं होती। मानो कर्म करना आवश्यक है और कर्म करोगे उनमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान छमूह कारक आवेंगे, क्यों क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, कारक होते क्रिया जनक, तो क्रिया करोगे वह कारण कर्म रहित कैसे होगा। तो कर्म करोगे बिना कारण बिना कारण के क्रिया कैसे करोगे, वो ही नहीं सकते, संभव नहीं, असंभव बात है। बिना कर्ता के कर्म के कारण के इनके कारकों के बिना क्रिया हो ही नहीं सकती, क्रिया होगी वह कारक आएंगे तो भी कर्म निरपेक्ष कैसे हुआ, कर्म निरपेक्ष साधन कैसे हुआ। तो कर्म वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति में कारण नहीं है, योग परमात्मा की प्राप्ति में कारण है। और योग में कर्म नहीं है और कर्म में कारण है, तो दोनों समझना चाहिए ना। कर्म है ये पूर्वार्ध है, योग ये उत्तरार्ध है। कर्म है ये तो साधन है, वो कर्म तो सकाम से भी होगा निष्काम भाव से भी होगा। कर्मणा बंधते जंतु, कर्मों से जंतु का बंधन ही होता है, मुक्ति नहीं होती कर्म से। और योग है कर्म सुकौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है, सिवाय योग के कर्म में कुछ तत्व नहीं है। अगर योग नहीं हो तो कर्म तो केवल बांधने वाले हैं, कोई फायदा नहीं है कर्म। तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन कर्म नहीं है, योग है। योग में कर्म नहीं है, कर्म निरपेक्ष योग होता है, नित्य योग है। नित्य योग में कर्म कैसे करोगे, कर्म करोगे कहां, कर्म लाओगे कहां, संप्रदान अपादान, नित्य योग है। नित्य योग नित्य ही योग है उसका, और संसार का वियोग नित्य है, सदा वियोग ही वियोग है। वियोग में वियोग है, संयोग में वियोग है, वियोग में वियोग है, वियोग ही मुख्य बात है। और परमात्मा के साथ वियोग में भी योग है और योग में भी योग है, फिर वियोग में भी योग है, नित्य योग है परमात्मा के साथ। अब नित्य योग में करने की क्या जरूरत है, कर्म सापेक्ष कैसे हुआ, नित्य योग है परमात्मा के साथ हमारा। तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन योग है, न कि कर्म है। आदमी कहते कर्म करो, जब बिना करण के कैसे होगा? अरे भाई, कर्म बिना करण नहीं होगा। मैं योग तो योग में करण क्या करेगा? आप, मैंने ये उदाहरण दिया, आप हो इस सत्ता में, किस कर्ण की जरूरत है? कौन से कर्ण से आप हो ये सत्ता सिद्ध करते हो? तो अपनी सत्ता सिद्ध करने में कर्ण की जरूरत ही नहीं, स्वतः सिद्ध। जैसे आपके सत्ता मानने में, आपकी सत्ता सिद्ध करने में किसी कर्ण की जरूरत नहीं है, तो कर्ण निरपेक्ष है। ऐसे ही एक बात और बताओ, आप ध्यान दो उस पर, स्वीकृति और अस्वीकृति में करने की जरूरत नहीं है, क्रिया करने में करने की जरूरत है। मैं कहता हूं, आपका विवाह हुआ किस कारण से हुआ साहब, बताओ? जैसे बोलना चलना आप जबान से होता है, देखना आंखों से होता है, सुनना कानों से होता है, लेना देना हाथों से होता है, आना देना पैरों से होता है। ये कर्ण जिससे होते हैं उसको कहते हैं कर्ण। ये कर्ण सापेक्ष है, परंतु आपने मान लिया कि मेरी स्त्री, इसमें किस कर्ण की जरूरत है? स्त्री ने मान लिया मेरा पति, तो किस कर्ण की जरूरत है? तो स्वीकृति अस्वीकृति में, संबंध में, संबंध विच्छेद में, और अपनी सत्ता में कर्ण की अपेक्षा है ही नहीं। क्या कर्म की अपेक्षा है बताओ? ऐसे परमात्मा है हमारे, ऐसे मानो परमात्मा को, तो इसमें कर्ण की क्या जरूरत है? हम नहीं मानते आस्तिक, हम नास्तिक नहीं मानते ईश्वर को, तो क्या कर्ण की जरूरत है? स्वीकृति अस्वीकृति स्वयं की हुई है। ये कर्ता कर्म क्रिया, ये जो सब कारक है क्रिया सिद्धि के लिए, स्वयं की सिद्धि के लिए तो रही है। स्वयं अस्वीकृति स्वीकृति करो, उसमें क्या जरूरत है? अब कहते हैं परमात्मा प्राप्ति होती अंतःकरण शुद्धि होने से। अगर कर्ण उसमें कारण पड़ता हो तो शुद्धि होने से परमात्मा प्राप्ति होगी, पर इसकी अपेक्षा ही नहीं है। तो शुद्ध हुए से अशुद्ध हुए, संबंध विच्छेद कर दो, अस्वीकृति कर दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। कूड़ा करकट का इकट्ठा कर बाहर फेंकना है, उसमें कितने कांच के टुकड़े हैं साहब, कितने इसकी तिनका है, कितने फूस करना है, क्या क्या चीज है, मतलब क्या फेंको बाहर फेंकना है, उसमें अलग अलग क्या करना है? टट्टी फिर तो अब कैसी है, पैसे तो सूख गई, गिर भी रही है, किसी काम आएगी नहीं, टट्टी भर गया भाई, उसमें क्या देखे? जिसको टट्टी भर गया उसमें क्या देखे? थूक दिया किसी काम आया कि नहीं आया, पत्ता मतलब क्या है? ऐसे त्याग के बीच में कौन से कर्ण की जरूरत है? इस वास्ते कर्म कारण है, उसमें कर्ण भी होता है, कर्ता भी होता है, सब अधे होते हैं। उनमें भी बारीक भेद देखा जाए तो, अब आपके व्याकरण का अभ्यास नहीं है, कैसे बताऊं? अकर्मक और सकर्मक दो क्रिया होती है, तो सकर्म में कर अकर्म में भेद क्या है? अकर्म क्रिया कैसे होगी, सकर्म क्रिया कैसे होगी? सकर्म होती है, अकर्मक भी होती है क्रिया, उसमें कर्म नहीं होता। ऐसी स्वीकृति अस्वीकृति में, अपनी सत्ता सिद्ध करने में कर्म अपेक्षा नहीं होता, अकर्म में कर्म की जरूरत नहीं, सकर्म में होता है। कर्ता जो क्रिया करता है उसके द्वारा फल होता है और में जाता है तो वो सकर्म होता है, और अपने में ही रहता है और में नहीं जाता, अकर्मक होता है। जैसे सोता है तो किस कर्म की जरूरत है? वो है, हो रहा है, किसी भी कर्म की जरूरत है? लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त धातु अकर्म धातु गणन तम अकर्म अकमा हो, इस वर्ग अकर्मक है। लज्जा आती जिसमें कर्ण क्या है, कर्म क्या है, क्या कर्म हुआ, सब अकर्मक धातु है। जो परमात्मा के साथ संबंध बांधना न बांधना तो योग है, तो योग में कर्ण की अपेक्षा करता है, कर्ण निरपेक्ष होता है योग और कर्ण सापेक्ष योग होता ही है। अब शंका करो इसमें, योग कर्म सापेक्ष कैसे होगा, कर्म कर्म सापेक्ष हो कर्ण होगा सब कुछ होगा, ऐसे ज्ञान में कर्ण होगा बुद्धि आदि कर्ण लेना पड़ेगा, ऐसे भक्ति में नाम जप कीर्तन आदि कर्म करने की अपेक्षा होगी, पर जहां भक्ति योग है भगवान मेरे है मैं भगवान का हूं, इसमें कर्म की क्या करेंगे, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा पाजी, क्या करेगा इसमें, ऐसे अपना स्वरूप है उसमें कर्ण की क्या जरूरत है, अपने स्वरूप में क्या जरूरत है कर्ण की, ना ज्ञान योग में कर्ण की जरूरत है, ना भक्ति योग में कर्ण की जरूरत है, ना कर्म योग में कर्ण की जरूरत है, योग में कर्मों में है ज्ञान में है भक्ति में है, पर कर्ण ज्ञान पर कर्म और भक्ति है ये मुक्ति देने वाला नहीं है, योग मुक्ति देने वाला है, चाहे कर्म योग हो चाहे ज्ञान योग हो चाहे भक्ति देने वाला, तो जिससे मुक्ति होती है उसमें कर्ण कहाँ है, खूब विचार करो आप, इसमें विचार करने पर जो शंकर है वो वहां सामने रखो, उसको भी शंकर है, एक कर्ण सापेक्ष है ही नहीं, पूछो
आपने बहुत ऊंची बात बताई, इतनी ऊंची है कि आपके सत्संग से कुछ कुछ पले पड़ती है लेकिन सर्वसाधारण के जैसा पले नहीं पड़ेगी,
मैं कहूँ अच्छी बातें बता रहे तो पल्ले नहीं पड़ेगी ऐसे कहूँ नहीं, अरे मामूली बातें हर एक चीज मिले तो बढ़िया बातें कहाँ कही जाएगी, बताओ
एक बात ये बताओ महाराज आपने भी आप ये बता दिया संसार से बंदे हमारे संसार में धंधा से बंदे रहा मृत्यु सामने ये भी आप दिखा दी कहीं भी आपके जन देखने मृत्यु सामने है, तो अब जो कर्म करा जो भी भक्तियों को भी करा जो मृत्यु का दृश्य करा या निर्भय होकर काम करा मृत्यु आपको काम करती
रहे, मैं निर्भय होकर करो, योग में भय है ही नहीं मृत्यु है ही नहीं, ना योग में कर्म योग हो भक्ति योग ज्ञान योग या लय योग हठ योग राज योग, योग में मृत्यु कभी हुई नहीं कभी होगी नहीं, निर्भय होकर करो, ये तो संसार से अलग होने के लिए मौत का भय दिखाया जाता है, वो भय कोई आवश्यक थोड़ी है, भय तो महाराज अभय है देवी संपत्ति, भय देवी संपत्ति थोड़ी है, अभयम अभय सत्य संस्कृति ज्ञान योग व्यवस्थिति, अभय निर्भय इसमें भय है ही नहीं, हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं कभी और है नहीं, चारू बात है, इसमें भय था नहीं भय है नहीं भय होगा नहीं और भय संभव नहीं है, याद कर पहले भय नहीं था अब भय नहीं है अगाड़ी भय नहीं रहेगा और भय होना संभव नहीं है, सदा निर्भय अभय चीज है, कर्म की अपेक्षा नहीं उसमें भय कहां से आ गया भाई, विद्रुक निद्रुक सब भगवान के सन्मुख नहीं होता तब तक है, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अघना से ही तब ही क्रोध जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं सन्मुख होते ही, सन्मुख होने में क्या है भगवान मेरे मैं भगवान, इसमें किस कर्ण की जरूरत है, भगवान मेरे मैं भगवान का, आपने एक स्त्री को स्वीकार कर लिया विवाह हो गया किस कर्ण की जरूरत है साहब, आप किसी के गोद चले गए उसे बत्तख बेटा बन गए इस कर्ण किस की जरूरत है, आप साधु हो गए अब साधु होने पर किस कर्ण की जरूरत है, देखो पहले सुन लो मेरी बात, मेरी बात को समझ करके काटो और प्रशंका करो, पर समझ कर करना अब बोलो, कैसी बात करें सोने से तोली जाए सोनो ले दो ईट मेरे वाली तोल जी साथ में कैसी बात करें, और ईट तोली जाए सोनो तोली जाए ऐसा क्रोध ही बात मुझे ईट है नहीं, पहले मैं कह दू थे समझ बोलो मेरी बात खूब समझ करके उसमें तर्क करो शंका करो बिना समझे बीच में कई बार क्रोध आवे, क्रोध काम लोभ, ये तो नरक में दरवाजा है। ये कर्ण जो है निरपेक्ष होते हैं कभी, एक हम लड़कों का काम करो लोग त्यागे, त्याग में कोई करने की जरूरत नहीं, त्याग में करने की जरूरत नहीं है, त्याग में क्या करने की जरूरत है, संबंध विच्छेद हो गया हमारे क्या करने की क्या जरूरत है। लड़की का विवाह होते ही अपने माँ बाप के वहां से संबंध विच्छेद हो गया, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं, और एक उनके साथ ब्याह होने से ससुराल की मात्र के साथ संबंध हो गया, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं, अंतर में शुद्ध वजन ब्याह हुआ है, शुद्ध नहीं हुआ ब्याह नहीं हुआ, ऐसा कभी सुना? तो स्वीकृति अस्वीकृति अपनी सत्ता, इसमें कर्म वर्ण नहीं होता है, इसमें जितनी शंकाएं खूब कस के करो बढ़िया जो विषय खुलेगा, शंका रह सकती नहीं। बोलो
भगवान कहना क्या तात्पर्य है, जो आरुण क्षोर कर्म कारण मुझे थे, तो कर्म कहाँ तक कारण है? वो
कर्म सदालाल कारण है, आरूढ़ होना चाहते। प्रश्न पूछा आरूढ़ क्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म की कहां तक जरूरत है? पूरी जरूरत है, आरूढ़ होना चाहता है, योगारूढ़ नहीं हुआ, आरूढ़ होना चाहता है, कर्म की जरूरत है, क्योंकि कर्म सकाम है कि निष्काम, इसका क्या पता लगेगा? अगर काम सिद्ध नहीं हुआ तो दुख होता तो सकाम कर्म है, अगर काम सिद्ध अरुचि है तो सकाम कर्म है, तो कर्म योग कैसे पहुंचोगे? अरे कर्मों की परीक्षा कैसे होगी? फल से परीक्षा होगी कि सकाम है कि निष्काम है, इसके बिना कैसे कर्म योग में पहुंचोगे? बहुत जरूरत है, मन आरूढ़ से जरूरत है, योगारूढ़ के लिए जरूरत क्या है? तो योग में क्या जरूरत है कर्मों की? अरे कर्म जहां हो गए वहां कर्ण भी होगा, कर्म भी होगा, संप्रदान होगा, अप्रदान होगा, सब कर्म सब कारक आवेंगे, क्योंकि क्रिया जनकत्वम कारक, तुम क्रिया मात्र के जनक होते हैं, वो कारक होते हैं, जहां क्रिया है ही नहीं वहां क्या जनक होंगे, क्या जन्य होगा? जब तक मन में वासना है, इच्छा है, कामना है, सिद्धि असिद्धि में विषमता होती है, असर पड़ता है, तब तक दूसरों के हित के लिए काम करने की जरूरत है। अपने स्वार्थ में करोगे तो मिटने का है ही नहीं कभी, चाहे मुक्ति की कामना हो तो भी नहीं मिटने का है। तब ध्यान देना, सर्वभूत हित ही रहता, कर्म योग कब होता है? अपने लिए कोई कर्म नहीं हो वो कर्म का आपके परमात्मा के साथ योग होगा, और कर्म और कर्म फल के साथ कर्म त्याग, तीन चीज, कर्मों का करना, कर्मों का न करना, और फल मिले न मिले, इनमें निरपेक्ष होने से है योग सिद्ध होता है। मां कर्म फल हेतु हो, माते संगोस्तु अकर्मणी, अकर्मणी का विसंग नहीं हो चाहिए, कर्म में विसंग नहीं हो चाहिए, फल में विसंग नहीं होना चाहिए, तब योग सिद्ध होगा। तो कर्मों की जरूरत कहां तक है? जब तक आपके कर्मों का फल होता है उसमें आप पर असर पड़ता है तब तक कर्मों की जरूरत है। किस कर्म की जरूरत है? निष्काम भाव से करने की। तो निष्काम भाव कैसे हो? इसमें एक मार्मिक बात बताते हैं, आप ध्यान लो। निष्काम आदमी कब हो सकता है? सर्वथा निष्काम होने में, निष्काम होने में कामना का त्याग करने में बड़ी कठिनता होती है, परंतु दूसरों के लिए कर्म किया जाए उसमें क्या कठिनता होती है? ऐसे प्राणी मात्र का हित हो, ये अगर आपकी कामना है भीतर, तो आपको निष्काम भाव होने में देरी नहीं लगेगी। लाखों करोड़ों रुपयों वाले जब ये टाल देते हैं कि इतने रुपये दान पुण्य करना है, उन रुपयों के लगाने में जोर नहीं आता है, पर ये अपने भीतर में अपना रुपया जगाने में मना जोर आता है, तुम जोर क्यों नहीं आता कि अपने है ही नहीं, ये तो पुण्य के हैं केवल। मेरे पर भी कलंक लगाया लोगों ने, मेरे से कहा समझिए इतना लाख रुपया हमारे पर आया कैसे, मैं भैया इसमें लगा दो इसमें लगा दो ऐसा कह दिया। तो उन्होंने वो पत्र का कोई टुकड़ा मिल गया उनके सगन के क्या समझ थे त्यागी कहते ये त्यागी है, ये कहते हमको लगा दो। तो त्यागी नहीं तो मेरे आगे क्या हुआ साहब, वो गर्ज करता है कि इतने रुपये कहाँ लगाऊ, तो सम्मति दे दी एवं क्या बात हुई। तो मैं आ बात गई मेरे को दे दे इतना तो ठीक है, हमारे तो एक कलंक लगा है तो मेरे को कहना पड़े, तो मेरे को क्यों कहना है कहीं लगाओ उसे आग मेरे को दो, मतलब शुभ काम में लगाओ अशुभ में लगाओ उसे आग में रख दो, हमारी क्या फर्क पड़ता है। अब देखे किस तरह से समझो पकड़ो पकड़ो आओ जोर से देखो, बात करने में पकड़ में जल्दी नहीं आऊंगा। तो कर्म कारण है क्योंकि अपना असर पड़ता है ना कर्मों के, फल की प्राप्ति में अप्राप्ति में तब तक निष्काम नहीं हुए। वो निष्काम होने के लिए आपको एक बात बताऊं जो कहने लायक नहीं है फिर भी आपको कहता हूं समझाने के लिए। हमने देखा है अनुभव किया वो बात बताऊं, कई घरों से भिक्षा मांगी और भिक्षा मांग लाल पावन को बैठे तो देखा कि ये रोटी बहुत ज्यादा है ये तो हम पा सकेंगे नहीं, तो इसमें क्या कि अलग डाल दो। तो अलग जली हुई कच्ची वो ठीक नहीं है ठंडी है वही तो डाल रहा मेरा, वही तो अलग डाल दी जो खाने को बैठा। बीती हुई बात बताता हूँ बिल्कुल हमारे अनुभव की बात, जिस अनुभव का उनका कैसा जोर आया। अब वह वक्त में कोई साधु आ गए मेरे विशाल तो उनको बढ़िया बढ़िया दे देंगे, उनको बढ़िया रोटी भी देने की हिम्मत हो जाएगी भैया आ गया बड़ी कृपा होगी बढ़िया दे देंगे, पर मेरे तक बढ़िया टाल देंगे क्या। तो जो वैराग्य से जो त्याग करता है उसमें जोर आता है और दूसरे के हित के कारण करने में जोर नहीं आता है। इस वास्ते प्राणी मात्र का हित कैसे ये लगन जिसके लग जाएगी निष्काम भाव से बहुत सुगमता से काम हो जाएगा। दूसरी के सकाम कितना ही बढ़िया हो उसका अंत होगा, साया ब्रह्म लोग तक जाओगे वहां के सकाम भाव तो वो खीने पूजे मरती लोग मिशन थी आ ब्रह्म भूना लोग 15 वर्षी ना, तो सकाम भाव से कितना ही ऊंचे ऊंचा काम किया सब खत्म हो जाएगा। निष्काम कैसे खत्म हो जाएगा, अभिक्रमण नाश होती इसकी अभिक्रम आरम्भ मात्र का नाश नहीं होता। थोड़ा भी इसका अनुष्ठान महान भय से रख सकता है सिवाय आपके कल्याण को और क्या करेगा कर निष्काम भाव, पर वो किसी दूसरों का हित। तो निष्काम भाव से कोई कर्म करना चाहे तो दूसरों का हित कैसे हो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से अधिकार से योग्यता से दूसरों का हिते सर्वभूत हिते रता, बिना दूसरों के हित की प्रीति के जिसका भाव से कर्म कैसे होगा। दूसरों के हित की लगन हो जाएगी सकाम नहीं होगा आप लेकिन निष्काम ही होगा। तो संपूर्ण प्राणियों का हित करना है ये जिसके भाव है, तो परे हित बस जिन के मन माही तेने कहा जग दुर्लभ को सुनाई। अब इसमें परहित कोई कर ही नहीं सकता, पर हित कर दे ऐसा अभिमान करना भी महान दुराभिमान है। अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना है कि दूसरे के हित करना है दूसरे को हेल्प करें। एक आदमी दुनिया का हित कैसे करेगा, दुनिया सब मिलकर के एक की सेवा करे तो एक की तृप्ति नहीं होती, वो एक आदमी दुनिया को तृप्ति कैसे कर देगा। अपने स्वार्थ का त्याग करे तो अपने स्वार्थ के त्याग में दूसरों का हित करने का भाव बहुत सहायक है। मैं भिक्षा की बात बताई मेरे मन में पैदा हुई कि ठंडी रोटी टाले किसी को दे देंगे तो किसी के क्या गर्म खाने की परहेज है, वो अच्छी रोटी नहीं खा सकता। कुत्ते को डालेंगे तो कुत्ते को अच्छी रोटी ठीक नहीं लगती, ये कहां तक समझ है। ये आई एक समझ में बिल्कुल गलती है। ये कर दी लगी चीज चाल रही, क्यों साग चला नहीं, क्यों साग थोड़ा उसके छोड़े, पर दूसरा आ जाए साग सही देंगे बढ़िया रोटी, हमें कहा देंगे भैया आ जाओ। तो दूसरे के हित करने के लिए त्याग बहुत सुगम होता है। तो त्याग का तात्पर्य है दूसरों का हित करना, तात्पर्य है भाई कैसे कर सकते हो दुनिया का, कोई नहीं कर सकता। अपना त्याग करने में दूसरों का हित है, पर हित बस जिनकी मनमाई, जिनका जग दुर्लभ कुसुनाई, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित के समान कोई धर्म नहीं है, एक दूसरों को पीड़ा करने के लिए के समान कोई पाप नहीं है। तो पीड़ा कब देता है, स्वार्थ देता है, अपना मतलब से दिखाना, दुख देगा ही, वो दुख भी दिए बिना रह नहीं सकता। जो अपना स्वार्थ चाहता है उसके द्वारा सबका हित नहीं हो सकता। स्वार्थ का त्याग केवल हित दूसरों का चाहता है उसके द्वारा निष्काम भाव से कर्म स्वतः होंगे। विश्वास करते प्राप्ति मामले व सर्वभूत हित रसा, प्राणी मात्र के हित में प्रीति है। हित कितना करता है, कितना कर सकता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल प्रीति दूसरों के हित में होनी चाहिए। जैसे अपने स्वार्थ में तो कामे नारी पियारी जिम लोभ प्रिय जिमी दाम तिमिर गुनाथ निरंतर प्रिय लागू, भगवान जैसे प्यारा लगे और बिल्कुल त्याग हो तो होगा के लिए। तो दूसरों का हित जिसके हृदय में निवास करता है उसके लिए क्या दुर्लभ है। तो सबका हित कर देना ये सिद्धि नहीं होती, सिद्धि करनी ही नहीं है, सिद्धि करने का तो अभिमान है। अपने स्वार्थ बुद्धि अहंता बुद्धि है उसका त्याग करना आवश्यक है। सब हित कैसे करेगा, परंतु प्रीति हित में है, कोई दूजा कर दे तो भी दूर बैठी जाती हो जाएगी, बहुत ठीक है इसका इलाज हो गया, बड़ी अच्छी बात है इसका कर्जा उतर गया, बड़ी अच्छी बात है संपन्न हो गए, इसमें क्या लगा आपके। औरों के हित है ना, वो अपनी रुचि होनी चाहिए दूसरों के हित करने की। आप कितना करते हो कितना नहीं करते कोई माप तोड़ नहीं है इसका, केवल आपकी प्रीति रीति वो आपके दूसरों के हित की चाहिए, फिर ठीक है। तो सर्वभूत हिते रहता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति में भी सर्वभूत हिते रहता, ऐसे प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रहता, चाहे सगुणों की प्राप्ति चाहो चाहे निर्गुण की प्राप्ति चाहो, प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति होगी वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। और अपने स्वार्थ में प्रीति है वो नहीं होगा। तो स्वार्थ में प्रीति कब आरुषो मंदिर कर्म कारण, कर्म किसके लिए, हित के लिए कर्म करना खास कारण है। अब जप करो कीर्तन करो ध्यान करो कीर्तन समाधि लगाओ चाहे, पर दूसरों के हित के लिए लगाओ तो समाधि का फल भी अपने नहीं लगी। तो मुक्त के कोई सिंह जमते हैं या किसी बात की जरूरत नहीं, कामना नहीं उसका ना निष्काम, अपने लिए काम करेगा कैसे निष्काम होगा। साधन करते हैं अपने लिए करते हैं, जल्दी सिद्धि नहीं होगी। इस दुनिया का हित जिस करे तो सिद्धि हो रही, सुबह हो जाएगी जिस दिन अपना कोई स्वार्थ नहीं तो सिद्ध क्या, जीवन मुक्त हो जाएगा। जीवन मुक्ति है वो बंधन है, बंद स्वार्थ का है, अभिमान का है, ममता का है, ये नहीं तो बंधन कैसे है। बंधते कहाँ है, जहां ममता है वहां, जहां ममता नहीं उन्हें क्या बंधन हुआ। इंग्लैंड का मुका होगा 10,000 का लाभ हुआ, 10 लाख का हो गया, हमारे क्या बंधन हुआ, 10 लाख का घटा नहीं क्या बंधन हुआ, न राग है न देश है न रस है न शोक है, बंधन तो ये है मेरा जी मेरा जी, शोक हो हरस शोक सम दुख है सुख है, कब गए स्वस्थ स्वमस्थित होगा। अब ध्यान देना स्वमस्थित क्या, बहुत मार्मिक बढ़िया बात, बड़ी सरल बात, बड़ी सीधी, कहते 84 लाख जोड़ी भोगनी पड़ेगी, नरक भोगना पड़ेगा, स्वर्ग भोगना पड़ेगा, जन्म मरण रहना पड़ेगा, किसको, कि जिसके गुणों में संग है, कारण गुण संगो से, अगर संग नहीं होगा जन्म कहाँ होगा, क्यों होगा, क्यों स्वर्ग जाएगा, क्यों नरक में जाएगा, क्यों स्वर्ग लाग जाएगा, क्यों पुनर्जन्म में जाएगा। तो गुणों का संग वो कैसे मिटे, दूसरों के हित करने से, अपने स्वार्थ का, तो अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग दूसरों के हित में तत्पर होने से ही होगा। दूसरों के हित में तत्पर नहीं होगा तब तो बातें बनाओगे नहीं, होगा नहीं, समझ नहीं सकते फल त्याग कैसे हो, निष्काम भाव से कैसे हो, अकल में नहीं आती बात। अगर
भजन में दूसरों का हित क्या,
भजन में दूसरों कल्याण के लिए भजन करता हूँ, इसका फल दूसरों कल्याण है। इस भजन का महात्म दुनिया मात्र का कल्याण हो, भजन जो मैं करूँ कल्याण दुनिया मात्र का हो, ध्यान मैं लगाता हूँ इसका फल दुनिया मात्र का कल्याण हो, समाधि करता हूँ इसका दुनिया मात्र का कल्याण हो। छोटा हो चाहे मोटा हो कोई काम करो दुनिया मात्र का हित हो, पर हित बस जिनके मन में ही जिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, धर्म हुआ जैसे अधर्म छूट दिया, धर्म मन छूट दिया। तो दूसरों के हित के लिए कर्म करना उम्र भर जीवन मुक्त होने के बाद में सिंह लोक संग्रह, हम लोक संग्रह के लिए कर्म करें, कुरियात विद्वांस तथा विद्वान को चाहिए वैसे ही करे जैसे आसक्ति वाले करते हैं, लोक संग्रह से लोगों को कल्याण करने के लिए। और योग क्या मतलब है, नहीं तो कृत्य नार्थ है, न अकृत्य नहीं है, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, दुनिया का हित करना उम्र भर करेगा, उम्र भर जीवन मुक्त होने पर भी करेगा, क्यों प्रवाह पड़ा हुआ सबका हित करेगा। ऐसे पुरुष के दर्शन पार्शन चिंतन से कल्याण होता दुनिया का, क्योंकि दुनिया का कल्याण का भाव भाव कोरा भरा हुआ है, जैसे कपूर की रेली में सुगंधी भरी हुई है इसी तरह से उसके जीवन में दूसरे का हित भरा हुआ है, दर्शन मात्र से कल्याण होगा दूसरे का, तो कल्याण ही भरा है वहां पर, कृष्ण से संबंध हो जाए कल्याण होगा, और क्या होगा बताओ, आप बताओ। जिसके स्वार्थ बुद्धि का त्याग दूसरों का हित भरा हुआ है उससे और क्या होगा, दुनिया कल्याण नहीं हो तो और क्या होगा, खुद का तो कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, वासना नहीं है, इच्छा नहीं, ममता नहीं, मात्र दुनिया का कल्याण होगा, क्योंकि स्थूल शरीरों की स्थूल संसार के साथ एकता, सुख शरीरों की सुख शरीर संसार के साथ एकता, कारण शरीर की कारण सृष्टि के साथ एकता, और इनका सब दूसरों के हित के लिए किया, तो दूसरों के हित के दूसरों की चीज दूसरों को सौंप दे, घर से क्या खर्च हुआ साहब, स्थूल शरीर तो स्थूल संसार का अंग है, सुख शरीर सुख संसार का अंग है, कारण शरीर कारण शरीर है वो कारण सृष्टि का अंग है, तो उसी की चीज उसको दे दी, आपने घर से क्या खर्च किया, और आप बंधन छूट गए। इस वास्ते कर्म करना है सब सर्वथा सबके हित के लिए, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं चाहिए, सबका हित कैसे हो, तो सर्वभूत हित रहता होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। वह हम हित कर देंगे ये तो अभिमानी की बात है, कर देंगे क्या हित कर देंगे, माँ है उसको दुख होता है, बालक को बुखार आ गया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, माँ का दुख होता है तो वो दुख माँ के हो जाता है, तो माँ का दुख होता है तो ममता के कारण होता है, ममता नहीं और दूसरे दुख से दुखी हो जाए तो निहाल हो जाए, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख से दुख है पर सुख से सुखी, ये सर्वभूति तेरा तभी पहचान है, कहीं भी कोई दुखी हो तो मेरा असर पड़ता है, कोई सुखी हो तो असर पड़ता है, तो दूसरे के सुख का दुख का असर पड़ता उसको दुखी होना ही नहीं पड़ता, सदा सुखी रहेगा, दुख अवस्थाओं में सुखी सुख अवस्था में सुखी मौज रहेगा एकदम, अपने सुख दुख से सुखी दुखी होता है उसका दुख कभी मिट ही नहीं सकता, चाहे स्वर्ग में चला जाए चाहे कहीं चला जाए। इस वास्ते कर्मों की आवश्यकता है जीवे जीते, पर किन कर्मों की, जैसे दूसरों का हित हो, अपने स्वार्थ का त्याग हो, अपने अभिमान का त्याग हो, अपनी ममता का त्याग हो, वो कर्म तुम्हारे कल्याण कारण होगा, आपकी ममता अहंता स्वार्थ बुद्धि है वो कर्म कल्याण नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा कल्याण कर्म नहीं कर सकता। तो दूसरे के हित की भावना है, इससे निष्काम भाव बहुत जल्दी सिद्ध होता है। और अब इसमें कई बातें आगे कहते हैं, बात बताओ। ज्ञान हो जाने के बाद क्रियमाण और संचित तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु उस जन्म में ज्ञान से पूर्व किए हुए, जैसे पूर्व जन्मों के कर्म है, ऐसे ज्ञान से पहले पहले क्षण में किए हुए कर्म भी पूर्व जन्मों के साथ गया, सब खत्म किए गए कर्म पड़ेगा या नहीं। और भोग तो नहीं, भोग चीज ही नष्ट हो जाती, भोग नाम है राजी नाराज होने का। तो अपना काम हुआ, नाराजी नाराजी है ही, भोग भोग हुआ नहीं, घटना घट जाएगी, अनुकूल प्रतिकूल घटना घट जाएगी, अनुकूल प्रतिकूल घटना घटना और है, और सुखी दुखी होना और चीज है। ज्ञान होने से सुखी दुखी होना मिटना है, घटना नहीं मिटती। बेटा मरना बेटा मरेगा, धन जान धन जाएगा, बीमारी बीमारी होगा, अपमान होगा, निंदा होगी, हो जाएगा। पर अपना प्रदर्शन नहीं होता, रुझ गया है, अपना प्रदर्शन नहीं होगा। ज्ञान ने सर्वप्रावण भस्म साधु को देखो, सब कर्मों को भस्म कर देता है। क्रियमान कर्म है उससे संचित बना, संचित से शरीर बना, तो संचित बना है क्रियमान कर्म से, क्रियमान कर्म हुआ है कर्तृत्व अभिमान से, कर्तृत्व अभिमान गले, क्रियमान कहाँ टिकेगा बेचारा। सब कहते हैं अंतर्गत के शुद्ध होने पर ही होता है, तो वो जो ऐसा मानते हैं अंतर्गत शुद्ध होने पर ही होगा। मैंने अंतकरण को छोड़ना है, कर्ण शुद्ध हुआ, शुद्ध टट्टी फिर गया, मैं बढ़िया है घटिया क्या, बढ़िया घटिया टट्टी है, थूक दिया थूक ने बढ़िया घटिया क्या होता है, कूड़ा कचरे बाहर फेंक दिया बढ़िया घटिया क्या होता है, उसमें तो फेंक रहा है, अपने संबंध नहीं। अरे बिना संबंध के, संबंध छोड़ने से जो शुद्धि होती है, संबंध रखने से शुद्धि होती ही नहीं। वैसी ममता मल कर जाए, ममता तो मल है, फिर शुद्धि कैसे होगी, अंतर्गण मेरा फिर शुद्ध हो जाएगा, मल तो लगा जाएगा शुद्ध हो जाएगा। बोलो, ममता तो मल है, ममता छोड़े उन्हें कैसे शुद्ध हो जाएगा, तो ममता कैसे छोड़ेगी कि दूसरे को सुख हो, ये सोचे ममता आप सब सुख जाएगी, रहेगा ही नहीं साथ। तो अब प्रारब्ध की बात आई है, तो प्रारब्ध की बात थोड़ी सी विस्तार से करने से पता लगे, इतना समय नहीं है। गणेश जिज्ञासा फिर पूछ लेना, नहीं तो जयराम नहीं। दो तरह से होती प्रारब्ध, एक घटना होती है, एक मन पर असर होता है। तो घटना तो होगी, जीवन मुक्ति होगी, बद्ध की भी होगी, नारकी की होगी, स्वर्ग वाले की होगी, घटना तो होगी, बोध हो गया उसके हृदय पर असर नहीं होगा, सम दुख कर सुगा क्योंकि स्वस्थ स्वामय नहीं है ये। 84 लाख जोड़ी भोगे तो जीव तो वही हुआ ना, भूतग्राम सह एवं, तो वही वही रहा, उसमें स्थिति रहेगी तो कहां सुख और दुख होगा। अपने में स्थिति नहीं, प्रकृति में स्थित होगा तो प्रकृति भोगते भोगेगा। नारायण नारायण नारायण।
राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2043 श्री कृष्ण संवत 5216 वैशाख शुक्ल अष्टमी तदनुसार 2 मई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम।